भगवान अभी पहली बार रेंगने लगे हैं, तो टर्न हो गए तो कौन सा उत्सव हुआ? अभी पहली बार करवट बदली तो कौन सा उत्सव हुआ? उसमें शक्तासुर का वध हो गया। छह दिन में भगवान ने पुतना का वध किया और तीन महीने के बाद जब करवट बदली पहली बार तो उत्सव मनाया गया, तो उसमें जो बहुत भीड़ भाड़ थी, उसमें बहुत शोर था, बहुत लोग थे वगैरह, बहुत बिजी सब लोग थे, तो कृष्ण को माता जी ने दूध पिलाया और सुला दिया। तो मैंने बहुत विचार किया उसके ऊपर कि ऐसा लिखा गया है कि एक विशाल बिस्तर था उसके ऊपर मदर यशोदा भी सो गई, माता यशोदा, और बालक को भी सुलाया और फिर वो उठ के चली गई, और वो जो विशाल बिस्तर था वो छकड़े के नीचे था। तो मैं सोच रहा था कि बैलगाड़ी कितनी बड़ी होगी, तो बैलगाड़ी बाद में ध्यान में आया कि बैलगाड़ी बड़े विशाल कमरे की तरह थी। जैसे ये मेरा जो ऑफिस है इससे दुगना, अगर ऑफिस आप सोचोगे इससे भी दुगने हाइट का, उसके पहियों साइड में दो पहिए थे ऐसे, और बीच में जो खाली जगह है ऊपर छकड़ा है, ऊपर जो बैलगाड़ी का स्थान है ना, तो वो बीच में जगह जो उसके अंदर वो पूरा बिस्तर, जैसे हम कहते हैं जम्बो बेड या किंग्स साइज बेड, वैसा सब इतना बड़ा बेड था, क्योंकि मदर यशोदा भी काफ़ी मोटी थी ना, बड़ी थी, क्योंकि वो द्वापर युग की माता है, वो थोड़ी हमारे जैसी द्वापर युग के जीवे सब लोग, तो वो कितनी बड़ी होगी। और वो तो पहले बुजुर्ग भी थी, उसका वर्णन भी दिया कि शरीर उसका बहुत स्थूल था, उसके पूरा वर्णन दिया है कि हाउ बिग शी वॉज, हाँ बहुत उम्र थी उनकी। तो उस स्थिति में वो बालक को दूध पिलाया, और बहुत बिजी थे गेस्ट लोगों को संभालने में, तो वो उन्होंने उसको खुद सुलाया और खुद ऐसे करके सुला दिया और सो गया, तभी उठ के चली गई वो। तब तो भगवान बीच में उठे और उन्होंने लात लगाया, तो फिर वो चक्र उसका टूट गया और सब कुछ जमीन पे आ गया। उसके बाद में मैं क्या बता रहा था, वो कथा कि उसके बाद में वो रेंगने लगे, तो उसमें वो सब कथा आती कि मणिमय आंगन में, नंद के आंगन में कैसे दोनों भैया रेंग रहे हैं। तो ऐसे जब रेंग रहे हैं तो उनके पैर में पायल है, घुंघरू, नुपुर, हाँ, तो कभी खड़े हो रहे हैं कभी गिर रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं कभी गिर रहे हैं, और क्योंकि पैरों में आवाज हो रही है तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो पैर ठोक ठोक के चल रहे हैं, उसके आवाज से उनको बड़ा आनंद आ रहा है, और कभी इधर उधर देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है, बाद में पता चलता है कि अरे मेरे पैर से आ रही है। जब पता चलता है कि पैर से आ रही है तो वो ठोक ठोक के सुन रहे हैं उसको बार बार, तो फिर गिर जाते हैं, तो मैया आती है भाग के और उसको उठाकर चलाना सिखाती है, तो वो जब चलने लगते हैं तो वो चल नहीं रहे, खाली खड़े होकर पैर ही ठोक रहे हैं, तो वो कह रही शुदा नंद रोहिणी को बता रहे, देखो देखो कैसे हैं, चलना नहीं चाहते, केवल ठोक 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 के आवाज सुनना चाहते हैं, ऐसे कह के बातें कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं और फिर चल रहे हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि देखो जो विश्व को चलाते हैं उसको मैया चला रही है, बालक बनकर आ रहे हैं। फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर वो खड़े होकर इतना खड़ा होना मुमकिन है, ऐसे ऐसे डगडगाते हुए ठोक ठोक के देख रहे हैं, आवाज आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है उनको। फिर वो उनके जो कमर में जो करधनी है उसकी घंटियां बज रही है, उसका भी उनको आनंद आ रहा है बहुत। फिर वो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा घुटवन चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो उनको एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, आदमी, तो बड़ा लंबा अंगरखा पहन के खड़ा है, तो उनको लगता है कि ये मेरे बाबा ही हैं। तो जाके ऐसे उसको घुटवन चलते चलते जाके उनका जो नीचे का कुर्ता है उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जैसे पकड़ के खड़े होते हैं तो उस आदमी को पता चलता है कि कोई मेरा कुर्ता खींच रहा है। जब वो मुड़ के देखता है तो कृष्ण को पता चलता है कि ये हमारे पिताजी नहीं है, तो तुरंत ऐसे सहमा जाते हैं और तुरंत भाग के अपने गोद में, माँ की गोद में चले जाते हैं, तो माँ उनको गोद में लेकर दूध पिलाती है। तो ये वर्णन श्री जी के भी लीला में आया है कि श्री जी भी ऐसे आंगन में रेंगती थी, कभी किसी का उन्होंने कुर्ता वृषभानु महाराज समझ के पकड़ा और फिर पता चला कि वो नहीं है, तो तुरंत भाग के वो अपनी मैया के गोद में गई, ऐसा भी वर्णन आता है। और अभी उसी लीला में बहुत बहुत लंबा वर्णन है उसका, कैसे वो रेंग रहे हैं और सब सखियां देख रही हैं और वृषभानु अपना नंद महाराज बैठे हुए हैं, रोहिणी बैठी हुई है, दोनों भैया रेंग रहे हैं, और उसके बाद में फिर उनको लगता है कि भाई वो सीढ़ी भी उतरना चाहिए। बालकों को ना सीढ़ी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, चप्पल में और सीढ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनको, वो चढ़ना उतरना उनको बहुत एक्साइटिंग लगता है। तभी वो तो महल में ऊपर है ना, पहाड़ के ऊपर महल है, उसके ऊपर है, तो पहली सीढ़ी सबसे ऊपर है और बाद में नीचे उतरने वाले काम है ना। तो वो अभी सीढ़ियाँ जो है ना वो इतनी बड़ी हैं कि लोग ही बड़े थे ना अभी, पहले जमाने में सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों थी कि लोग भी बड़े थे। अभी वो सीढ़ी हमको बड़ी लग रही है क्योंकि हम लोग छोटे हो गए ना साइज के। तो वो लंबे साइज की जो सीढ़ी है वो अभी कृष्ण इतने छोटे हैं कि उनका कमर से पैर तक जितना लंबाई है उससे भी लंबी वो सीढ़ी है। शरीर का भाव देखो, यहाँ से लेके ये धड़ हो गया ना, ये कमर हो गया और कमर के नीचे पैर है आपके, तो कमर के नीचे पैर जगह जो साइज है वो भी सीढ़ी से छोटा है, सीढ़ी उससे बड़ी है। तो अब बालक कैसे उतरेगा अभी? तो बालक क्या करेगा ना, उल्टा हो जाएगा हाँ, और पैर छोड़ेगा नीचे, है ना। हम लोग भी समझो, आपको सीढ़ी पे चढ़ा दिया, टांके पे चढ़ा दिया और आपको उतरना है तो आप सीधे नहीं उतर सकते, आप उल्टा हो जाएंगे, ऐसा पकड़ेंगे और पहले ऐसा देखेंगे ना बेचारा, धीरे धीरे पैर रखे ऐसा देखेंगे कहाँ पैर जा रहा है, कहाँ सीढ़ी है, फिर पैर रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे। तो वैसे वो उनको अभी उल्टे हो गए ना ऐसे वो, और उनको भी उतरना है तो उन्होंने पैर छोड़ दिए हैं हाँ, तो उनका पेट जो है वो सीढ़ी के एज पे है और पैर छोड़ दिए नीचे और पैर को सीढ़ी नहीं लग रही है अगली वाली। तो फिर वो कोशिश करते हैं ऐसे, तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनका थोड़ा सा जो बड़ा पेट है वो सीढ़ी पर अटका हुआ है और पैर लटक रहे हैं और वो झूल रहे हैं ऐसे 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 झूल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अभी पेट छोड़ के नीचे उतरू क्या, कि क्या करूं, मतलब कितना लंबा है मालूम है ना, कितना नीचे मेरे पैर के नीचे सीढ़ी है पता नहीं है। तो वो सारी उनकी कोशिश सब देख रहे हैं बैठ के। तो वो जब लटक रहे हैं पेट के बल पर सीढ़ी पर, उसमें नारद मुनि वहां आते हैं दूर, और नारद मुनि दूर से देखते हैं नारद मुनि कि भगवान देखो लटक रहे हैं और उनको आंखों में आंसू होते देखकर कि देखो परब्रह्म परात परात पर भगवान गोलोकेश्वर बालक बनकर नंद के आंगन में रेंग रहे हैं और लटक रहे हैं सीढ़ी पर। ये दृश्य कितना दुर्लभ से सीन है, ये कहाँ मिलेगा देखने को ऐसा सीन, कि आंखों में आंसू का बहुत आनंद होता है उनको और अचानक रोने लगते हैं दुख से। क्यों रोते हैं? उनको ना उन लोगों की याद आती है जो अनेक जन्म तक तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ परिवार छोड़ के योग साधना कर रहे हैं, नाक दबा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उनको उनकी याद करके रोने लगते हैं कि उनको क्या मालूम कि नाक बंद करके श्वास रोक के वैराग्य करके ज्ञान प्राप्त करके तपस्या करके उनको ये दृश्य मिलने वाला नहीं है। इतना अद्भुत दृश्य है ये कि वो परात्पर भगवान जिसके नाखून का एक किरण भी उनको दर्शन नहीं होता है, वो स्वयं भगवान जिनके शरीर से किरण निकलते हैं जिसको पकड़ने के लिए लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, वो स्वयं पूरे भगवान यहाँ पर बालक बनकर सीढ़ी पर लटक रहे हैं। ऐसा पूरा एक लंबा भजन है जिसमें पूरा वर्णन किया गया है ना, सुंदर। और उसके बाद फिर जो और थोड़ा रेंगने लगते हैं, थोड़ा पैर में बल आता है, तो उनको फिर चंदन अगुरु सिंदूर सब लगा के गौशाला में छोड़ते हैं। और गौशाला में छोड़ते हैं तो ये इतने इतने से बालक है ना, तो सज धज कर मोरपंख लगाया हुआ है, इतने इतने से धोती कुर्ता पहना है उनको, धोती और दुपट्टा पहना है और अलंकार पहना है, चंदन लगाया, अगुरु लगाया है, मोरपंख लगाया है, छोड़ दिया है। तो फिर वो धीरे धीरे चलते ऐसे 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 करके जाते हैं और बछड़ों के पूछ पकड़ लेते हैं, बछड़ों को पूछ पकड़ बकरे बछड़े के मुंह तरफ है, उनको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। पीछे जैसे ही उनका पूछ, देखो कभी भी आप किसी भी गाय बैल के पूछ को पकड़ेंगे ना तो वो जरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी भी आप देखो कितने भी पहचान के लोग होंगे लेकिन जब पूछ पीछे होती है और पीछे पता चलता नहीं कि कौन पकड़ रहा है उसको, पहचान का आदमी मालिक पकड़ रहा है कि बाहर का पकड़ रहा है। और जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने बाल को हाथ लगाए ना तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेरे भी कुछ सैंडी को हाथ लगाए तो एकदम मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो एक हमारा एक ईमान का लक्षण है ना, वो डिग्निटी का लक्षण है वो। तो ऐसे ही गाय के पैर को हाथ लगाए ना तो बहुत उनको बिछड़ जाते हैं वो, तो पीछे से जब बछड़ों का पूछ पकड़ते हैं ना दोनों, तो दोनों एकदम बिछड़ जाते हैं और वो भाग जाते हैं, मतलब भागना वो शुरू करते हैं। और ये बच्चे इतने ऐसे हैं कि वो पूछ छोड़ते ही नहीं है, अभी पैर में बल नहीं है कि दौड़े उनके पीछे पूछ पकड़ के, है ना। इतने छोटे बालक है कि ऐसे इतने बड़े भी नहीं कि वो भाग रहे हैं इनके पीछे पकड़ के, ये भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं ना, पैर में इतना बल ही नहीं है। तो जैसे भागते हैं और वो छोड़ते नहीं है तो धड़ा करके गिर जाते हैं, सर ऊपर हाथ में पूंछ दोनों में और पेट पे बल्ब में गिर जाते हैं, और नीचे पूरा चिकना मिश्रण है पूरा गोबर गोमूत्र का फर्स्ट क्लास एकदम। तो वो भाग रहे हैं सब लोग, पेट के बल सब लोग सब जगह पर घूम रहे हो। तो रोहिणी इतनी खुश होती है देख के इसको, जोर जोर से बुलाते हैं, शुदा दीदी शुदा दीदी जल्दी आ जाओ, देखो देखो क्या हो रहा है। अभी ना ये वर्णन करना इतना आसान नहीं है एक्चुअली क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली वो जो वर्णन है वो कौन कर सकता है। बार बार हमारे जो आचार्य हैं वो जब लिखते हैं वो बताते हैं कि जो हो रहा है ना वो वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है, खास करके वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई बार बताते हैं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में कि जो हो रहा है ना उसका वर्णन करना मेरे बस में नहीं है। मैं आपको थोड़ा अंदाज दे सकता हूँ लेकिन वो पूर्ण उसका वर्णन नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। अभी समझो अभी महाप्रभु ने एक छलांग लगा दी ऊपर आकाश में, तो वो कैसे लगाए वो कैसे वर्णन करेंगे आप, कैसे ऊपर थे कैसे नीचे आ गए फिर कैसे गिरे, वो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। और वो लिख रहे हैं किताब, उनको दर्शन हो रहा है साक्षात और लिख रहे हैं वो, तो बोला मैं वर्णन नहीं कर सकता जो मैं देख रहा हूँ। उस तरह से वो बुला रही है आ जाओ दीदी आ जाओ देखो कैसे खेल रहे हैं। तो वो भी भाग के आ जाओ देखते अरे दोनों कैसे पूरे गौशाला में घूम रहे हैं, तो बाल बाल भी देखे ताली बजा रहे हैं। ये वर्णन भागवत में आता है पहला वर्णन सबसे हरे कृष्णा। तो ये सब लीलाएं जो बाल्यपन की लीलाएं ना वो जो लिखा है सत्यव्रत मुनि ने इति दृक्सो लीला भीर आनंद कुंडे स्वगश्रम्य माध्यम अख्यापयम तक की, उन्होंने अपने इस सुंदर सुंदर बाल लीलाओं के माध्यम से सारे ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। क्योंकि भगवान ने भले गोवर्धन उठाया होगा, हरिश्चंद्र को मारा होगा, किसी को मारा होगा, बहुत लोगों को उन्होंने मारा, बहुत सारा लीला किया उन्होंने, लेकिन बाल लीलाएं उसमें सबसे मधुर और सबसे मन लुभावनी है। क्योंकि बाल लीलाएं होती है ऐसी है, किसी की भी जिसका भी बाल काल होता है तो कितना भी कुरूप होगा कितना भी कुरूप होगा दिखने में, ये जब बाल्य बाल होता है उस काल में जो भी कुछ करता है वो बहुत मनमोहक होता है। अगर परम लावण्य संपन्न भगवान अगर बाल बनते हैं तो बालक बनते हैं तो कितना सुंदर होंगे वो, और कितनी उनकी अदाएं और इनकी कहने की बोलने की चलने की जो कलाएं हैं वो कितनी मन लुभावनी होगी। उसको देखने के लिए तो दूर दूर से देवता लोग आते हैं। ऐसा वर्णन पढ़ा मैंने अभी कि इंद्र भी भगवान के जन्म के समय आए थे और भगवान का आशीर्वाद लेके चले गए। सब देवताएं आते हैं और शिवजी भी आए हुए हैं, शिवजी गोकुल में भी आए हुए हैं और नंदगांव में भी आए हुए हैं। शिवजी जब गोकुल में आए थे क्योंकि क्या है ना भगवान 3 साल के बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आए, और भगवान एकदम बाल स्वरूप का दर्शन करना है तो फिर पहले गोकुल में आना पड़ेगा और बाद में आएगा तो 3 साल के ऊपर का दर्शन मिलेगा। तो शिवजी महाराज गोकुल में भी आए हैं और उनको नकार दिया गया है, फिर उनको बुलाया गया है, तो उनका नाम पड़ा चिंताहरण महादेव, वो गोकुल में है। और वही शिव जी नंदगांव में आए तो आशेश्वर महादेव बने। तो ये सब लीलाएं कार्तिक महीने की लीलाएं हैं, बहुत सुंदर। अभी आप बताइए कि गोवर्धन लीला का तिथि वाइज सीक्वेंस क्या है, बताइए। अभी लीला एक दिन थोड़ी हुई, 7 दिन हुई ना, फिर गोवर्धन पूजा कभी हुई, गोवर्धन पूजा हुई प्रथमा प्रतिपदा को हुई। देखो इधर क्या लिखा है 30 यानी अमावस्या, अमावस्या के दिन दीपावली होती है। देखो बलि प्रतिपदा भी इसलिए हाफ डे, लेकिन सुबह 9 बजे तक अमावस्या है समाप्त हो जाएगी, तो 9 बजे के बाद में 9:10 के बाद में प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, मतलब बलि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। और गोवर्धन पूजा जो है वो भैया दूज के दिन मिक्स है वो, ठीक है जो भी है तिथि का लोग छोड़ दो, लेकिन प्रतिपदा के दिन अभी पंचांग देखूंगा मैं तो उसमें प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा होगी। तो उस दिन तो पूरा आनंद का मौसम था ना, पूरा दिन भर तो पहले वाद विवाद हुआ, कृष्ण भगवान ने नंद महाराज को अच्छी तरह बहकाया मानसा बताकर, वो बहुत अच्छे श्लोक बताए भगवान ने नंद महाराज को कि जन्म भी इसका होता है वो कर्म के कारण होता है और कर्मणैव विधीयते और मृत्यु भी उसकी कर्म की वजह से होती है। सुख दुख भय आनंद जो भी है वो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु सुख दुख और भय सब कुछ जो है वो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देवता कैसे बीच में आ गए? कोई कनेक्शन ही नहीं उनका। आप कैसे बोल रहे हो देवता की वजह से ये सब हो रहा है? ऐसा करके उन्होंने कैसे भी करके अपने पिता को उलझाया। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया, ऐसे कहा गया कि सभी ग्वाल बाल उस दिन इतने खुश हो गए कि आज गिरी पूजन हो गो, आज गिरी यज्ञ हो गो, मतलब गिरी यज्ञ होना एकदम आनंद हो गया सबको। सब लोग सज सज के आ गए घर पे जाके और सब सामान लेकर आए। फिर गोवर्धन की पूजा हुई है ना, बहुत लंबी चौड़ी। और उसके बाद में जब पूजा समाप्त हुई तो फिर वर्षा शुरू हुई। हाँ, तो अगले 7 दिन वर्षा हुई है। तो प्रथमा के दिन पूजा हुई, द्वितीय से वर्षा शुरू हो गई है। तो आप गिनिए अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मतलब अष्टमी तक वर्षा होती रही। द्वितीय से भैया दूज से चालू हो गई और अष्टमी तक वर्षा चलती रही। अब ये अष्टमी वो नहीं है, ये 7 साल वाली अष्टमी है जब भगवान 7 साल के हो गए थे। जब भगवान 5 साल के थे और 5 साल के होने के बाद जो अष्टमी कार्तिक के आई उसमें भगवान को बड़ी गायों का भार दिया गया गोपाष्टमी के रूप में। तो ये गोपाष्टमी का ही दिन है जिस दिन तक वर्षा चलती रही। और फिर अष्टमी के दिन भगवान ने पर्वत को नीचे रखा और नवमी के दिन, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, लेकिन नवमी के दिन भगवान का अभिषेक किया गया और गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। ये भी घटना कार्तिक की है क्योंकि इंद्र आए और गिड़गिड आए, पर भगवान ने उनको थोड़ा सलाह भी दिया और माफ भी किया, इंद्र ने प्रार्थना भी किया, उनका का दिल नहीं भरा। तो इंद्र ने सबको आदेश दिया तो अप्सराएं जल लेकर आई और अप्सरा कुंड का निर्माण हुआ, वो भी कार्तिक महीने का दिन अप्सरा कुंड का निर्माण। फिर शिवजी आए, बहुत लंबी कहानी है वो, शिवजी आए उसमें और रुद्रकुंड में बैठे और फिर उस बीच में ऐरावत जाकर अपने 5 सुंड में आकाश गंगा का जल लेकर आए और अपना कुंड बनाया उसने, उसका नाम है ऐरावत कुंड, वो भी कार्तिक महीने में निर्माण हुआ है। और फिर अप्सराओं ने वो जल, ऐरावत ने अपना जल, सुरभि ने अपना दूध, इस सबसे भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने अपने अपने देवताओं को आदेश दिया कि अपने अपने लोकों में जितने जितने श्रेष्ठ वस्तु हैं, बेस्ट वस्तु है सब लेके आना। तो वरुण के लोक से सिंहासन आया, उसको भगवान को बिठाया गया और वायुदेव के यहाँ से छतरी आई और वजह मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अलग अलग उन्हें अलग अलग चीजें लाई वहां पर, पूरी ऐश्वर्य संपन्न जो चकाचौंध आंखियों चौंधिया जाने वाली जो चीजें है ना, देखना भी उसको मुमकिन नहीं, इतना तेज है उनके अंदर रत्नों से भरे हुए। और लाकर फिर भगवान का साथ में सुरभि ने और ऐरावत ने शुंड से उनका अभिषेक किया। जो जल निर्माण हुआ, गाहा विंदति इति गोविंद, ऐसे इंद्र ने ऐलान किया कि आज से इनका नाम गोविंद होगा। और फिर उनके शरीर को अभिषेक करके जो जल निर्माण हुआ वो गोविंद कुंड के नाम से जाना गया। और एक घटना हुई है इसी दिन, क्योंकि ये जब समाचार सब जगह फैल गया कि भगवान का नाम गोविंद हो गया और गोविंद कुंड का निर्माण हो गया, भगवान को वृंदावन का राजा घोषित किया गया, तो सब सखियां एक बोल रही हैं, अरे कृष्ण को गोविंद के रूप में घोषित किया गया तो राधा रानी को वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित कर देना चाहिए। तो सब राधा रानी को लेकर इमलीतला में लेके आई और इमलीतला में उनको सिंहासन में बिठाया और सभी सखियों ने मिलकर राधा रानी का अभिषेक किया है इमलीतला में। तो वो घटना भी इसी महीने में हुई है और ये सभी नवमी की तिथि में हुआ है। वहां पर गोविंद कुंड हुआ, यहाँ पर अभिषेक हुआ राधा रानी का, ऐसा सब है। और इस महीने में क्या हुआ है तो बताया नहीं आपने, रास लीला नहीं हुई क्या? रास पूर्णिमा से तो आरंभ हुआ है, सबसे पहले भगवान ने मुरली बजाई है। हाँ, तो वो अरिष्टासुर का वध हुआ ना, अरिष्टासुर का वध भी अष्टमी के दिन हुआ था। उसकी भी ऐसी लंबी कथा है कि वो शाम के समय भगवान ने मुरली बजाई थी कि उनको गोपियों को बुलाकर गिरिराज में रास करने के लिए, लेकिन मुरली बजाई तो उसके बाद में एक भयंकर ध्वनि आई उसके बाद में, तो उनको समझ में आया कि ऐसा क्या क्या हुआ, बहुत भयंकर ध्वनि हो गई, जैसे कोई भूकंप हो रहा हो या कोई उल्कापात हो रहा हो। तो वो अरिष्टासुर आ रहा था बहुत जोरदार गर्जना करते हुए, तो फिर भगवान ने उसका युद्ध किया, उसका युद्ध का बहुत लंबा वर्णन है, युद्ध करके उसको भगवान ने मारा। तो उसके बाद में फिर गोपियों के पास आए, फिर गोपियों ने कहा कि नहीं आपसे बात करेंगे, फिर उन्होंने श्यामकुंड का निर्माण किया। फिर गोपियों को कहा कि तुम अभी अपराधी हो गए हो, तुमने राक्षस का पक्ष लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको भी स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं हमारे कुंड में आप स्नान कर सकते हो, लेकिन एक श्लोक राधा रानी बोलते हैं कि तुम्हारे गोवर्धन क्या नाम श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, लिखा है किताब में, वो कहते हैं कि तुम्हारे कुंड में गौ वृषभ वध के पाप का चालन उसमें हुआ है, तो हम लोग स्नान करेंगे तो हमें वो पाप लग जाएगा, इसलिए हम लोग आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो कंगन से उन्होंने तोड़कर खड्डा बनाया और उसमें दो घटिका में, द्वै घटिका ऐसा वर्णन किया गया है, दो घटिका में उन्होंने वो मानसिक गंगा के जल से भर दिया उसको। तब तक उनके कपाल में बहुत श्वेत बिंदु पसीना आना शुरू हो गया था। तब कृष्ण कह रहे हैं कि अरे इतने देवता लोग खड़े हैं, उनको भी इशारा करके बोला था आप खड़े हो जाओ मत, आप जो देवता लोग सब आए थे ना, जो तीर्थ स्थान जो व्यक्ति रूप तीर्थ स्थान है ना, वो सब लोग आए थे ना उधर, उन्होंने तो कृष्ण का श्यामकुंड भर दिया था, लेकिन वो कृष्ण ने कहा था कि आप रुको थोड़ा रुको आप, तो फिर वो उनको उन्होंने फिर इशारा किया उनको कि जाओ उनसे बात करो, तो वो आए और कृष्ण ने पहले उनको सिफारिश दिया था कि इनको सेवा ले लो आप, इतना आए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आप, तो फिर कृष्ण ने उनको इशारा किया, तो वो चार लोग नीचे उतरे, उनका नेता और चार लोग, और फिर उन्होंने राधा रानी को घुटने पर आकर विनती किया बहुत कि आप हमारा सेवा स्वीकार कीजिए, हम आए हैं सब लोग, क्योंकि क्या है ना उन सब लोगों को भी आश्रय चाहिए ब्रज में, तो बड़ी बड़ी तमन्ना लेकर आते हैं ब्रज में वो कि आश्रय प्राप्त हो, और एक कृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त हो गया, राधा रानी के चरणों में आश्रय प्राप्त होना चाहिए, इसलिए वो रुकते हैं वहाँ पर। फिर राधा रानी दयालु जो है वो हाँ कर देती है, फिर वो सब लोग उनके ही इसमें प्रवेश करते हैं। तो विशेष बात यह है, जो नई नई बातें अभी क्या है ना, भगवान की लीला बहुत रहस्यमय लीला है, उसमें अलग 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 पहलू होते हैं, तो हर बार पढ़ते तो नए नए पहलू का पहचान होती है। तो ये तो उसमें कृष्ण कहते हैं कि अरे अभी आपका कुंड जो है वो इतना महान होगा, तो मेरे कुंड में तो गौ वध का पाप अटका हुआ है, तो मेरे कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा। ऐसे कृष्ण ने जब जैसे ही कहा, राधा ने अपना कंगन लिया और जो दोनों के बीच में जो ब्रिज था ना उसको तोड़ दिया, तो तुरंत इसका पानी उसमें, उसका पानी इसमें आ गया। ये एक एक कथा है, एक एक रीजन है उसका। दूसरा रीजन ये है कि जैसे ही ऐसे अलग अलग कल्प में अलग अलग हुई है, तो जैसे ही दो ये कुंड फॉर्म हो गया और वो कुंड फॉर्म हो गया, वो पहले हो गया, जैसे ही तैयार हो गया तो दोनों में प्रेम का भर्ती आ गई, प्रेम की वजह से दोनों स्वेल हो गए और फिर एक हो गए, ब्रिज को पार करके एक हो गए, दूसरी कहानी। और तीसरी कहानी है कि जैसे ही ये कुंड बन रहा था, तो कृष्ण ने उस नीचे से गड्ढा करके उसको पानी पूरा यहाँ गश कर दिया था। तो अलग अलग प्रकार से राधा कुंड श्याम कुंड का मिलन हुआ है। और फिर जब राधा कुंड का निर्माण हुआ, तो कृष्ण ने कहा कि ये जल नहीं है, ये राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है, स्वयं राधा रानी का प्रेम है, ऐसे वरदान दिया। फिर कहा कि ये कुंड जो है मुझे राधा रानी कितनी प्रिय है उतना प्रिय होगा, नंबर टू। नंबर थ्री कहा कि इसके अंदर आप सुन रहे हैं क्या क्या बताया, दो वरदान दिए बताओ, दो वरदान क्या दिए बताओ, ये बता था कि आप नहीं सुन रहे। पहला वरदान दिया कि ये जल नहीं है, राधा रानी का प्रेम है। दूसरा बताया कि ये कुंड जो है वो राधा रानी जितनी मुझे प्रिय है उतनी प्रिय होगा। तीसरा वरदान दिया कि जो इसमें स्नान करेगा वो राधा रानी के इतना ही मुझे प्रिय हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। और उसमें हाँ, तो और फिर राधा रानी और कहा कि राधा रानी के मन में जितना प्रेम है मेरे लिए, वो प्रेम वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जो उससे स्नान करेगा। ये सब अलग अलग वरदान है। वो मुझे राधा रानी के इतना प्रिय होगा, स्नान करेगा, और उसको राधा रानी के मन में मेरे लिए कितना प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अलग वरदान हो गया ना दोनों। फिर राधा रानी वरदान देती है कि जो इसमें स्नान करेगा, शाम कुंड में स्नान करेगा, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होगा। फिर राधा रानी एक बात करती कहती है, जब वो कहते हैं ना बात की हमारे में कोई स्नान नहीं करेगा, वो कहते हैं कि मैं रोज इसमें आके स्नान करूंगी, भले तुम 100 ऐसे वृषभासुर का वध करोगे, फिर भी मैं तुम्हारे कुंड में आके स्नान करूंगी। तो रोज सवेरे 11:48 पर राधा रानी वहां आती है और स्नान करती है शाम कुंड में, और पाछा खेलती है दूसरे घाट में कृष्ण के साथ। अरे रोज नहीं, रोज कुछ नहीं होता है, लेकिन राधाष्टमी के दिन 12 तक बड़ा तूफान मचता है वहां पर, वो जबरदस्त दूध की धार निकलती है उस दिन रात को 12। अच्छा, ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि कुछ समय अरिष्टासुर को मारने में गया, कुछ समय श्याम कुंड को बनाने में गया, कुछ समय इनकी 2 घटी का मेहनत में गया, उसके बाद में 12 के समय राधा रानी ने उनसे कुंड भरवाया और राधा कुंड का आविर्भाव बीच रात में हुआ है। और उस समय ये सब बाढ़ आना, कंकण से तोड़ना, वो सब कुछ हो गया है। तो उस समय पर आज भी रात को 12 दूध की धार निकलती है उसमें से, क्या कारण है उसका? क्षीर सागर भी उसमें विराजमान है ना, एक धाम क्षीर सागर भी है, क्योंकि बीच में क्या हुआ, जब सब लोग कृष्ण ने कहा कि देखो आपने कहा कि सब तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन आप कैसे दर्शन करोगे उसके, मैं स्नान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप बोलेंगे आपने तो चीटिंग किया है, इसलिए मैं सभी धामों को यही बुलाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि देखो कुंड तो भर गया मेरा, सब धाम तो आ गए हैं, तो राधा रानी कहते मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे ही बता रही है उनको। तो फिर हर एक कुंड ने, धाम ने और सागर ने आके परिचय दिया है, क्षीर सागरोस्मी, ताम्रपर्णोस्मी, हाँ मैं गोदावरी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं सिंधु हूँ, सिंधु रेवच, और मैं क्षीर सागर हूँ। ये सभी लोगों ने अपना परिचय दिया राधा रानी को, अस्मी क्षीर सागर अस्मी, सब करके एक एक करके परिचय दिया है। त्रिवेणी कूप आया है वहां पर, सब लोग त्रिवेणी संगम वहां प्रकट हो गए हैं, प्रयागराज अस्मी, ऐसे करके बड़ा श्लोक में सबने अपना परिचय दिया है। तो फिर क्षीर सागर में प्रवेश किया ना उसने, क्षीर सागर ने आदमी इसमें भी प्रवेश किया, तो क्षीर सागर बाकी सब प्रकट हो जाते हैं उसमें, उस दिन सब ऐसे प्रकट होते, लेकिन सबका पानी सेम कलर का होता है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, इनका दूध है ना सफेद रंग का तो दिखाई पड़ता है कॉन्ट्रास्ट में, और वो दिखते सब लोग जंप करते हैं उसके अंदर, और दिखाई पड़ता है। और जब राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार हुआ था ना, कुछ साधारण राधा कुंड का एक नाम कंकण कुंड भी है, और कंकण कुंड राधा कुंड के अंदर है, क्योंकि कंकण कुंड का रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो विस्तार किया, तो कंकण कुंड के समझा कंकण कुंड इतना होगा, तो उन्होंने यहां तक विस्तार किया उसका, तो कंकण कुंड जो है उसके अंदर है, और उनको बड़ा करके गहरा बना दिया। तो राधा कुंड का जब जीर्णोद्धार हुआ था ना पानी खाली करके, तो कंकण कुंड का दर्शन भी हुआ था। और उस समय जब भी उन्होंने सब कीचड़ निकाला ना, वो सब भैंस धोते हैं क्या क्या करते रहते हैं, तो उससे सभी स्रोत उसके बंद हो गए थे। उन्होंने जब साफ किया ना, तो कहते हैं 10-10 मंजिल तक के फवारे उड़ रहे थे उसके अंदर। जब उसके स्रोत खुल गए ना, जो ढके हुए थे बंद हुए थे, वो जब खुले तो उनको ना जीर्णोद्धार वाले लोगों को मैनेज करना नहीं, जीर्णोद्धार वालों को, तो जीर्णोद्धार करने वालों को वो मैनेज नहीं कर पाए, वो इतना बड़ा फव्वारे स्पीड से उड़ रहे थे। तो फिर उन्होंने ना, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए उसको, इसलिए उन्होंने उसको सीमेंट के बैग रख के बंद करवाया, क्योंकि इतना जल था उसके अंदर। तो ये कैसे ना, अभी श्रद्धा की बातें, अगर आपको श्रद्धा की बातें हैं, अगर विश्वास है तो भगवान आपको दर्शन दिलाएंगे। अब ये स्रोत उड़े, इसका मतलब स्रोत है नीचे, सभी धाम नीचे विराजमान है उसके अंदर, लेकिन भाग्यवान जीवी जो श्रद्धालु है वही पहुंचेगा देखने के लिए उसको, और हम लोग कहेंगे सब बकवास की बातें। तो वो दूध उसलिए आता है उधर, सब लीलाएं कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि ब्रज की लीला सुनते समय या भागवत के दशम स्कंध का वर्णन सुनते समय तर्क को दूर रखो, तर्क बुद्धि को दूर रखो। तर्क बुद्धि उपयोग करने के लिए ये दशम स्कंध नहीं है भगवान का। भगवत गीता में दिमाग लगाओ और दशम स्कंध भागवत का तर्क बुद्धि को छोड़कर सुनो, केवल उसका क्या कहते हैं उसको आनंद लो, रसपान करो। उसमें ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा बात मत करो, हाउ इज पॉसिबल। एक बालक कैसे उठा सकता है पर्वत, ऐसे सब फालतू बातें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे फालतू बातें मन में करने का विचार आता है तो दशम स्कंध उसके लिए है ही नहीं। तो 10th कैंटो इज नॉट मेंट फॉर एनालिसिस, ओनली मेंट फॉर रिलिशिंग, जस्ट रिलिश। और वो जो शुद्ध भाव से शुद्ध मन से दशम स्कंध की लीलाओं का आस्वादन करते हैं उनकी परम शुद्धि हो जाती है आत्मा की।